پھر فرمایا جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. اس کو تو ہائی لائٹ کر لیں بلکہ یاد کر لیں. خوشگوار زندگی کس کی؟ من عمل صالحا کون ہے بھائی؟ من ذکر او انثی. شرط کیا ہے؟ وہ ہوا مومن. بس یہ تین چیزیں ہیں. عورت ہو یا مرد ہو ایمان کی حالت میں عمل صالح کر لو. زندگی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. آج کوالٹی لائف نہیں ہے. دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو سکون نہیں ہے. کسی کے پاس اولاد ہے لیکن فرما برداری نہیں ہے. کھانے کو ہے بیماریاں لگ گئیں کھا نہیں سکتے. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوتی خوشی اور ایک ہوتی خوشحالی. خوشحالی ہے خوشی نہیں ہے. اور خوش وہ ہیں جن کے پاس خوشحالی کوئی نہیں ہے. اسلام آپ کو دعوت دیتا ہے آپ اللہ پہ نظریں لگا کر اپنے حصے کے کام کریں, سر ڈالیں نیچے اور بس چپکے سے بڑے مسکین بن کے جو اللہ کہتا کرتے جائیں. آپ کی زندگی حیات طیبہ ہوگی. کیسے؟ ہر گندی سوچ سے پاک, ہر گندی مصروفیت سے پاک, گندی نظروں سے پاک. آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا, آپ کو لوگ بیکار مشغلوں میں نہیں الجھائیں گے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا دل دماغ خوش ہوگا. اور اس کو صرف وہ بندہ امیجن کر سکتا ہے جو اس دور سے گزر رہا ہے. آج آپ دیکھیے زندگی میں کئی علائشیں ہیں. اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے خوشی نہیں ہے, اندر بے چینی بہت ہے, بے کلی بہت ہے. شوہر کی نظریں کہیں, بیوی کی نظریں کہیں, بچے کہیں ادھر کہیں, اور گھر سونے چاندی سے لدا پدا. اصل کوالٹی لائف اللہ کے حکموں پہ چلنے پہ. سورۃ انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. کیوں؟ لما یحییکم. اس کو اس سے جوڑ لیجئے. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق جینے والوں کی زندگی حیات طیب بن جاتی ہے. اللہ ہماری زندگیوں کو پاک کر دے, سب بیکار چیزیں اللہ نکال کر ہمیں پاکیزہ رزق دے دے, پاکیزہ عبادات دے دے, اور ہمیں بیکار چیزوں سے نکال کر کارآمد چیزوں میں ڈال دے. اور آخرت میں تو پھر اجر ہے ہی. کون سا بیاخسانی ماں کانو یا عملو. ایسے لوگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے عملوں کو اللہ آخرت میں اپ گریڈ کریں گے اور خوبصورت سے خوبصورت کرتے جائیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب بھی قرآن کھولیں, بیچ میں سے کہیں پڑھ رہے ہیں, دیکھیں سورہ فاتحہ شروع کی بسم اللہ سے پڑھ لیا, سورت البقرہ شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, بات ہو گئی. اگلے دن آپ شروع کر رہے ہیں دوسرے رکوع سے, اب وہ شروع رہے وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ. آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ. کیوں شیطان سے کیوں پناہ مانگے؟ نعوذ باللہ, کیا ہم کوئی غلط کام کرنے لگے ہیں؟ کیا ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی ہم ایسی کرپشن کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, سب سے زیادہ ایک شیطان اس بندے پہ زور لگاتا ہے جو قرآن پکڑنے لگتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ اس وقت شیطان اگر ادھر ہوتا اور جو چھوٹے موٹے ہیں ان کو آپ پہ غصہ کتنا آ رہا ہے. شیطان کو پتا ہے جس نے قرآن کو پکڑ لیا اس نے حبل اللہ کو پکڑ لیا, وہ میرے ہاتھ سے نکل کر اللہ کی بنا میں چلا گیا. اسی لیے دیکھیے اللہ نے آگے فرما دیا, اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس کتاب سے جوڑ دے. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے, تو یہ لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا. اس کو نوٹ کرے, بتدریج, گریجولی, سلو اینڈ سٹیڈی ونز دا ریس, سمپل ٹو کمپلیکس. اسلام کا یہی مزاج ہے. 90 میں چلتی ہوئی گاڑی ایک دم سٹاپ کریں گے الٹ جائے گی. اس کو پہلے سلو ڈاؤن کیجئے, گیئر چھوٹا کیجئے, آپ سپیڈ سے پاؤں اٹھائیے, پھر جائے گا. بالکل لوگوں کو اسی طرح مہلت دینی چاہیے. خود کو تو مہلت کم دیں, دوسروں کو زیادہ دیں. تو قرآن کا مزاج تدریج کا ہے. اس وقت آپ اور میں ایک بڑا فاسٹ سفر طے کر رہے ہیں. اب اس میں اگر آپ کو بہت اور باتیں بتانے لگ جائیں تو یہ ہدف پورا نہیں ہوگا. اس ہلکے سے سفر سے گزر جائیے, پھر تمنا کیجئے کہ اللہ اب ہمیں تھوڑا سا اس سے زیادہ بھی سیکھنا ہے. آپ کو ایک اور موقع مل جائے گا, اس کو بھی گزار لیجئے. जब वो चुन लेंगे समझ गए, आप कहेंगे नहीं अभी तो हमने और गहराई से लेना, ये है इल्म सीखने का काम। देखिए तदरीज तो हर काम में आप और हम करते हैं, बस आप देखिए कि बाज़ ख़वातीन को आपने देखा होगा जब मेकअप करती हैं पहले हल्का हल्का फाउंडेशन लगा लेंगी, फिर उसको जज्ब करेंगी, फिर उस पर और लगाएंगी। क्यों? अगर इकट्ठा आपने पहले ढेर लगा लिया तो क्या होगा? नहीं जज्ब होगा ना। जिंदगी के असूल में ये बात रखें, पीछे ना पड़े, अपनी औलादों के पीछे ना पड़े, उनके दिल मायल करें, जज्ब की कैफियत हो, थोड़ा लगाएं जज्ब करवा दें। एक जुमला बोला हजम कर गया, अब दूसरा बोलिए, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इतना प्यारा कुरान है ये लोगों को जरूर फायदा देता है। सिर्फ यह कि हम ओवरडोज कभी करते हैं या बिल्कुल रिलैक्स, जब कहीं नहीं कहा तो कभी नहीं कहा, 18 साल हम बोले ही नहीं और अब जब बोलने लगे तो अल्लाह की बना, और फिर बोलते भी क्या है कहकर दौरे कुरान से सुनकर आए हैं। याद रखिए लोगों को नफरत हो जाएगी आपके इस कुरान से। अपने आप को कभी मोहलत ना दें लेकिन दूसरों को हमेशा सहूलत दें। ऐसा क्यों किया? ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता कर दें। आप देखिए आप उर्दू में कहते हैं सहज पके सो मीठा हो, जो खाना हल्की आंच पे पकता है वो बहुत लजीज होता है। स्लो कुकर का नाम आपने सुना होगा, सारे विटामिन उसके अंदर होते हैं, सारी खुशबू उसमें होती है, और अगर आप तेज आंच पे खोल दें खाने में खुशबू नहीं होगी सारे घर में होगी। तो यही बात है, इस इल्म को रचने दें, इसको पचने दें, इसको जज्ब करें। आप एक नेकी करें फिर उसके बाद दूसरी फिर तीसरी, और अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा ये नेकियों का सफर इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाएगा। और फरमाबरदारों को जिंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और इन्हें फलाह सआदत की खुशखबरी दे। क्या पता चला? फरमाबरदारी करने वालों को ही इस किताब से फायदा होता है। बाकी रह गए लोग, अब वहां से मक्का के माहौल पे दोबारा आपको मुझे ले जाया जा रहा है। वलकद नालम नम यकुलून, हमें मालूम है ये लोग तुम्हारे मुतल्लिक कहते हैं। एक शख्स इस आदमी को सिखाता पढ़ाता है, हालांकि इनका इशारा जिस आदमी की तरफ है, इसकी जुबान तो आजमी है और ये साफ अरबी जुबान है। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते, अल्लाह कभी इनको सही बात तक पहुंचने की तौफीक ही नहीं देता। लिख लें जिसने दाई के ऊपर ही तनकीद की, उस तक दावत नहीं पहुंचेगी। भाई अल्लाह के नबी किससे सीख के आते हैं, कौन पढ़ाता है, किधर से पढ़े, कौन उनका टीचर, किस मदरसे से, किस इदारे से, किस स्कूल ऑफ थॉट से, तुम्हें क्या लगे? तुम वो ले लो जो वो देते हैं। मक्का वाले आप पर बातें छांटते थे, कहते ये बताएं आपको ये बातें सिखाता कौन है? भाई अल्लाह ने सिखाई नहीं कौन वो? अच्छा, चंद गरीब गुलाम थे मक्का में, अल्लाह के नबी अपनी तबीयत की सादगी की वजह से उनके साथ उठते बैठते थे। अच्छा, आप उनके पास बैठते हैं ये सारी बातें वो आपको पटियां पढ़ाते हैं? नाउज़ुबिल्ला। याद रखिए पैगाम पे नजर दीजिए, अगर आपको हिदायत चाहिए ना तो पैगाम पे, कहा क्या जा रहा है, यहां आते हैं आपको मिलता क्या है। और अगर आपने हिदायत को मशकूक करना है ना तो पैगाम देने वाले के हालात जिंदगी जान ले। बाज लोग घंटों के हिसाब से तारुफ करवाएंगे, फलां कौन है, उधर से पढ़ा, इधर से पढ़ा, क्या उनकी खूबियां। बाज सिर्फ लोगों को शौक ही होता है, इंटरव्यूज कीजिए, कहाँ से शुरू किया, किधर से पढ़ा, क्या किया। भैया आपको इससे क्या मिलेगा? क्या पढ़ा है, क्या सीवी है, क्या पढ़ा है? एक लेक्चर सुन लें, एक दिन आके क्लास में देख लें, एक सफारा मिलके बैठ के पढ़ लें, खत्म होगी बात। तो हमेशा याद रखिए पैगाम पे नजर रखें, कभी भी नहीं भटकेंगे। आपको फायदा दे रहा है अगला, बस अब उसका कोई फायदा है उसमें, उसका नुकसान है आपको क्या लगे। आपको उसकी बात सुनकर अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है कि नहीं करता आपको क्या? आपके दिल में ईमान आ रहा है तो वो मुनाफिक है, वो काफिर है, वो फासिक है, वो फाजिर है, आपको क्या लगे। तो हमेशा याद रखिए हिदायत से महरूमी की वजूहात में एक बहुत बड़ी वजह यही थी जिसका मक्का वाले शिकार हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। झूठी बातें नबी नहीं घड़ता बल्कि झूठ वो लोग घड़ रहे हैं जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते, वही हकीकत में झूठे हैं। अब यहाँ एक और खूबसूरत आयत, मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानिही, जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफर करे और वो अगर मजबूर किया गया हो और दिल इसका ईमान पर मुतमईन हो तब तो खैर, मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफर को कबूल कर लिया इस पर अल्लाह का गजब है और ऐसे सब लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया और अल्लाह का कायदा यह है कि वो इन लोगों को राह निजात नहीं देता जो इसकी नेमत का कुफर करें। ये वो लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, ये गफलत में डूब चुके हैं, जरूर है कि आखिरत में यही लोग खसारे में हैं। यहाँ मार बिन यासर की कहानी सुनाकर आपको मुझे एक बात बता दी के मजबूरियों के नाम पर गुनाहों को कबूल ना कर लो, बस दफा हम किसी हालात में फंस जाते हैं, निकाल दीजिएगा अल्लाह, निकल जाए, तौबा करें, इस्तगफार करें कि अल्लाह आज गलती होगी, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, बात खत्म हुई। लेकिन कुछ लोग पहले भूलते हैं, फिर भोले बन जाते हैं, फिर भोले बन के गुनाह करते रहते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों की पकड़ की कि देखो अगर तुमने जानते बूझते गुनाह को कबूल किया तो फिर तुम्हारी निजात नहीं। أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، آية 108، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ دل کی گہرائی سے کہ اللہ ہمارے کانوں آنکھوں پہ مہر نہ لگانا، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، ہمارے کلچر میں ایک جملہ بہت بولتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایک جملہ ہمارے کلچر میں بہت عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور موسٹلی بندے یہ جملہ کب بولتے ہیں؟ جب گناہ کرتے ہیں، غلط کام کر کے اٹھیں گے کوئی کہ یہ کیوں کیا، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت ہائی لائٹ کریں اور اس کو کوٹ کیا کریں، اگر کبھی کل آپ کے سامنے کسی نے یہ جملہ بولا تو آپ آیت دکھا دیجئے کہ اللہ کس پہ غفور و رحیم ہے جس نے ایمان لا کر گھر چھوڑا، ہجرت کی، اللہ کے دین کے راستے میں مشکلیں سے ہی پھر صبر کیا، چار کام کر کے پھر صرف اللہ سے رحمت کی امید رکھو، یقین پھر بھی نہیں ہے، تو کہاں گناہوں کے اوپر شیر ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ یہ آیت بھی مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے، یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا۔ آج دنیا میں ہم بہت دوسروں کے مقدمے پیش کرتے ہیں، اس کی صفائیاں، اس کی ستھرائیاں، اس کا یہ، اس کا یہ، قیامت کے دن صرف ایک ہستی کا مقدمہ انسان پیش کرے گا، اور وہ اپنا نفسیہ۔ قیامت کے دن لوگوں کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، میری جان میری جان، یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ آج دنیا میں اپنی فکر کر لیں دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن حسرت اور افسوس ہوگا۔ یہاں اپنے لیے محاسبہ بھی لکھتے ہیں، محاسبے کا نقطہ، میں کہاں دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اپنا نقصان کرتی ہوں۔ اردو میں ایک محاورہ بولتے ہیں، اپنے پاؤں خود کلہاڑی مارنا۔ کچھ لوگ ہیں صرف دوسروں کو تھوڑی دیر کے لیے راضی کرنے کے لیے اپنے نام اعمال میں نہ جانے کیا کچھ بھر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اب یہاں ایک بستی کی کہانی ہے، سورت نحل نعمتوں والی سورت ہے، جہاں نعمت ہوگی اس کے بعد یا شکر ہوگا یا ناشکری ہوگی، شکر ہوگا تو نعمت بڑھے گی، سورت ابراہیم آیت 7 میں پڑھ چکے۔ اب یہاں ذکر ہے کہ جب نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے، ناشکرے لوگوں کو اللہ کیا سزا دیتا ہے، اور یہی مثال مکہ والوں کی تھی اور آج ہر اس بستی والوں کی ہے جن کے پاس اللہ دین کی نعمت بھیجے اور وہ اس کی ویلیو کو نہ پہچانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، لیکن لوگوں نے ان کا کیا حال کیا کہ بالآخر آپ کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا۔ اس سنیریو میں اس آیت کو سنیے گا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ دنیا میں جہاں بھوک ہے، جہاں خوف ہے، جہاں مہنگائی ہے، وہ لوگ یہ آیتیں ضرور سوچیں کہ آخر اللہ ہم پہ یہ مشکلات کیوں لاتا ہے، وجہ کیا تھی۔ آگے لکھا ہوا ہے، ان کے پاس ان کا اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کا عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ دل کی گہرائی سے ان تمام مسلمان ملکوں اور شہروں اور صوبوں اور بستیوں کے لیے دعا کیجئے کہ جو آج اسلام کے باوجود بھی بے چینیوں، پریشانیوں، اور ادھر گولی چل گئی، ادھر یہ ہو گیا، آج ادھر لڑائی، ادھر جھگڑے، یہ ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ کیسے پھر اللہ کا شکر ادا ہوگا؟ حلال کے ذریعے سے۔ فرمایا، کیا کرو؟ پس سے لوگوں کو اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ سوچیے آج سحری میں کیا کھایا تھا، क्या मैंने दिल की गहराई से उसे अल्लाह का शुक्र अदा किया। दिन ब दिन जितना सोशल मीडिया आम होता जा रहा है, हमारे खाने पीने की चीज़ें आम हो रही हैं, ये फ़ायदा उसमें फ़ायदे, इलायची के फ़ायदे, दूध के फ़ायदे, फलां के फ़ायदे, ये खा लो तो प्यास नहीं लगेगी, ये खा लो तो भूख नहीं लगेगी, लेकिन शुक्र कितना है। आप देखिए कि जो कुछ हम खा के बैठते हैं, सच बताएं, क्या हम उसको डिजर्व करते हैं? फिर हम ना शुक्री करें, फिर हम कहे हाय क्या है, आज है ही कुछ नहीं, नथिंग टू ईट, फ्रिज बंद ना हो, हम कहते हैं है ही कुछ नहीं खाने को। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह जो खिला दिए ये तेरी रहमत है, वरना मेरे अमल मेरे करतूत तो इतने बुरे थे कि मैं भूखी मर जाती लेकिन मुझे कोई पानी का घूंट ना देता। अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम पर हराम किया है वो है मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त और वो जानवर जिन पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। अलबत्ता भूख से मजबूर और बेकरार होकर अगर कोई इन चीज़ों को खा ले बगैर इसके कि वो कानून इलाही की खिलाफ वर्जी का ख्वाहिशमंद हो या हदे ज़रूरत से तजावुज़ का मुर्तकिब हो, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। और ये जो तुम्हारी जुबानें झूठे अहकाम लगाया करती हैं कि ये चीज़ हलाल और वो हराम है, तो इस तरह के हुक्म लगाकर अल्लाह पर झूठ ना बांधो। जो लोग अल्लाह पर झूठे इफ्तरा बांधते हैं वो हरगिज़ फलाह ना पाएंगे। दुनिया का ऐश चंद रोज़ा है, आखिरकार उनके लिए दर्दनाक सजा है। तो क्या पता चला कि दूसरों को खुश करने के लिए हराम को हलाल नहीं कहना। वो चीज़ें हमने खास तौर पर यहूद पर हराम की थी जिनका जिक्र इससे पहले हम तुमसे कर चुके हैं, और ये उन पर हमारा जुल्म न था बल्कि इनका अपना ही जुल्म था जो अपने ऊपर करते गए। सुम्मा इन्ना रब्बक लिल्लज़ीन आमिलुस सुअ बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका वसलहू। अलबत्ता जिन लोगों ने जहालत की बिना पर बुरा अमल किया, जहालत, इग्नोरेंस, जहालत कई किस्म की होती है। एक तो पता ही नहीं था हुक्म, दूसरों उसकी शिद्दत नहीं पता थी। हाय, इतने बड़े दर्जे का ये गुनाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अब नहीं करूंगी, अल्लाह माफ कर देगा जब आप उस काम को छोड़ देंगे। और फिर तौबा करके अपने अमल की इसलाह कर ली, तो यकीनन तौबा इसलाह के बाद तेरा रब इनके लिए गफूर और रहीम है। या फिर नोट करें, कब है गफूर और रहीम अल्लाह? जब तौबा और इसलाह हो। गुनाह करते रहना और ये सोचना अल्लाह गफूर और रहीम है, ये अल्लाह पे झूठ बांधना है। यानी गुनाह पे तकरार करना और अल्लाह से ये उम्मीद रख लेना कि अल्लाह ताला बस सब कुछ माफ़ कर देगा, अल्लाह ऐसा नहीं है। देखिए, गिल्टी कॉन्शियस हो जाइए, पुलिसमैन भी आपको छोड़ देगा। मेरी सीट बेल्ट नहीं बंधी रही, मुझे सॉरी कर, मैं सॉरी करता हूँ, मैंने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया, मेरी स्पीड तेज़ थी, वो भी कहेगा अच्छा जाओ, और आपको वो रोके और आप बहस करें क्यों किया, क्यों मजबूर किया, किसने कहा सीट बेल्ट बांधने का कानून बनाओ, वो आपको जेल में ले जाएगा। आपका वो जुर्म तो छोटा था कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, जो आगे बहसें की ना वो बहुत बुरा जुर्म है। यही बात है, दीन के मामले में कभी बहस ना करें, दुआ करें कि अल्लाह तौफीक दे दे। आज मैं नहीं मान रही, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं कल मानने लग जाऊं। अब मैं अपने ना मानने को साबित करके प्रूव करूं, उसके फतवे, उसकी दलीलें, इस पर अल्लाह को आराती है। वाकया ये है कि इब्राहिम अपनी जात से एक पूरी उम्मत थे। मैंने इधर जमा की थी हजरत इब्राहिम की 10 सिफात इस एक आयत में। जिंदगी इसको कहते हैं, क्वालिटी लाइफ ये है। ये है वजल लिसान नसित किन फिल आखरीन। आप भी इसमें 1, 2, 3 लिखिए। दो तीन आयात में देखिए इब्राहिम की सिफात क्या बयान की गई। नंबर एक, इब्राहिम अपनी जात में एक पूरी उम्मत थे। क्या मतलब है? बड़ा ही रश्क आता है इस एक जुमले पे। एक शख्स वो काम कर गया जो पूरी उम्मत मिलके भी नहीं करती। आज हम क्या करते हैं? पूरी उम्मत नकारा होके बैठी हुई है, इल्ला माशाल्लाह। तो जिंदगी ऐसी गुजारें, वक्त ऐसा प्लान करें, टाइम ऐसा मैनेज करें कि थोड़े वक्त में ज्यादा काम करें। नेकियों के पौधे लगा लीजिए, कौन रोकता है? यकीन कीजिए, हमारे पास जिंदगी में मौके होते हैं, हमें नजर नहीं आते। कभी हम कहते हैं अभी अभी मुमकिन नहीं, नहीं ये खुशी का मौका है, नहीं ये गम का मौका है, नहीं ये छुट्टी का दिन है, ये ईद का दिन है, ये फलां का दिन है, ये फलां का दिन है। कब करेंगे नेकियां? रमजान में इतनी नेकियां करनी है, अब रमजान के बाद कौन करे नेकी? ईद के दिन नेकी, तौबा करो। यानी आप देखिए, कई लोग हैं जो ईद की नमाज पढ़ने पे झगड़ते हैं और ईद के दिन की जोहर असर मगरिब हंगामों में गुम जाती है। तो जिंदगी को बैलेंस तरीके से गुजारेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपसे बहुत काम लेगा। अल्लाह का मती और फरमान थे और यकसू थे, ये फिर नोट करें। बी फोकस्ड, पूरे पारे का थीम फोकस होना था। फोकस्ड बंदा काम कर जाता है, जमे रहे, अधूरा ना छोड़े। देखिए आपको इस बारे में अधूरे काम ना करने की बात क्यों कही, हम एक काम शुरू करते हैं अभी आधा किए ना, साथ ही कोई दूसरा कोई कार्य उसके काम में दखल देना शुरू कर देंगे, उसकी मदद करने लग जाएंगे, बाद में अपना भूल गया, आधे काम पूरों को भी जाया कर देते हैं। अधूरी कोशिशें कभी फायदा नहीं देती। तो आज एक नियत कीजिए, जो पेंडिंग काम है पहले उसको पूरा करो। बिलीव में आप देखेंगे आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके घर की आधी अलमारियां खाली होंगी जिसमें आपने अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। कोई आधा स्वेटर बुन के रखा हुआ है, कहीं आधा खाना पका के रखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं, बीफ हो शुरू किए एंड तक पहुंचूंगी, खत्म करके उठूंगी। जिनको हर जगह दखल देने का बहुत शौक होता है ना, वो अपना काम अधूरा और दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। नहीं भाई, अपना करके पूरा करूंगी। और हमारे कल्चर में अल्लाह हिदायत दे हम सबको, कभी आप टिकट बुक करवाने जाएं, कभी किसी दफ्तर में जाएं, ऑफिस में आप चार छह लोग बैठे हैं, आप किसी एक काउंटर वाले से बात करें, बाकी दोनों भी खड़े होकर देख रहे होते हैं ये क्या कर रहे हैं, फिर वो उनको मशवरे दे रहे होंगे। अल्लाह के बंदो अपना काम कर, तुम्हारी लाइन उधर लगी है, तुम इनके साथ लगे। बींग अ नेशन इस वक्त हम फोकस नहीं है। और आज अगर सिर्फ आप इस चीज पे नजर रखें और आप महसूस करेंगे आपके घर में कई मसाइल खत्म हो जाएंगे जब आप और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड और जो घर में रहते हैं वो फोकस्ड हो जाएंगे। अपने काम से काम रखो, दूसरा क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उधर क्या हो रहा है, तो फिर इसमें जिंदगी की बरकत चली जाती है। फिर अगली खूबी, वो कभी मुशरिक ना थे, कितना बड़ा ऑनर है। क्यामत के दिन उनको खतरा ही नहीं इस बात का कि अल्लाह ये ना पूछ ले कि इब्राहिम शिर्क तो नहीं कर कर आए। और सबसे बढ़ के अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे, शाकिर अलियनुमिही। और क्या खूबी थी, अल्लाह ने इनको मुंतखब किया, चुने हुए, और सीधा रास्ता दिखाया। और क्या था, दुनिया में इनको भलाई दी और आखिरत में वो यकीनन सालेहीन में से होंगे। आप जरा इमेजिन तो कीजिए, इब्राहिम की किस्मत पे नाज करने को दिल करता है, अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं चीज़ों में कर ले। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह किसी की झूठी तारीफें नहीं करता। अल्लाह ने लोगों को ऐसे ही नहीं इधर से उधर किया हुआ, कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है जिसकी वजह से अल्लाह बंदों को चुनता है। फिर हमने तुम्हारी तरफ ये वही की कि यकसू होकर इब्राहिम के तरीके पर चलो, वो मुशरिकों में से न थे। रहा सब तो वो तो हमने इन लोगों पर मुसल्लत किया जिन्होंने इसके काम में इख्तलाफ किया, और यकीनन तेरा रब क़यामत के रोज़ इन बातों में फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे। आखिरी आयतें पारे की भी आखिरी, सूरत की भी आखिरी, और यकीन कीजिए कि तबलीग के नाते से अखीर हुक्म है, जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं अखीर, दी बेस्ट अहकाम आता है। तबलीग कैसे करना है, ये स्टेप्स हैं, इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। फरमाया नबी, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, और लोगों से मुबाहसा करो ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। तुम्हारा रब ही ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन इसकी राह से भटका हुआ है और कौन राह रास्त पर है। और अगर तुम लोग बदला ले लो तो बस इसी कदर ले लो जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन जो सब्र करने वालों ही के हक में बेहतर है। अल्लाह अकबर। और साथ ही साथ क्या कह दिया, ए नबी सब्र से काम किए जाएं, और तुम्हारा ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। इन लोगों की हरकत पर रंज न करो, न इनकी चालबाजियों से दिल तंग हो, अल्लाह इन लोगों के साथ है जो तकवा से काम लेते हैं। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और जो एहसान पर अमल करते हैं। तबलीग करना कोई आसान काम नहीं है, किसी के हाथ में छुरी है और है भी वो बच्चा, आपने देखा जान निकल गई, एक जाता चीख मारे, जोर से हाथ उसका पकड़े और छुरी छीने, क्या होगा? पहले तो बच्चा डरेगा, फिर जब छुरी छीनेगी ना तो वो छुरी उसके हाथ को काट देगी। क्या करना चाहिए, जब खुदा ना खास्ता ऐसा कोई करीब मंजर देखे तो फौरन उस बच्चे की तवज्जो इधर उधर करें, खामोश रहें, उसके हाथ में कोई दूसरी चीज पकड़ाएं, यूं दिखाएं उसको चमकता वो कोई रैपर ही पकड़ा दें, कोई चाबी पकड़ा दें, वो उसको देखते ही वो छुरी फेंक देगा, जो ही छुरी फेंकेगा आपके हाथ में आएगी। गुनाह भी ऐसे ही होते हैं, आपको नेकियां करके मजा आ रहा है ना, गुनाह करने वालों को गुनाह करके भी मजा आ रहा होता है। आपको कुरान की महफिल में मजा आता है, लोगों को किसी और महफिल में मजा आ रहा होता है, आप कैसे एकदम उनको कहें छोड़ दो। तो हमेशा याद रखिए, हिकमत बड़ी बात है। एक तो दीन को नुकसान हुआ लोगों के चुप रहने पे, लोगों ने बुराइयों पे टोकना छोड़ दिया। पीछे हम पढ़ चुके हैं सूरह मायदा और आले इमरान में डिटेल से। बनी इसराइल पे भी इसी की तनकीद थी कि उनके उलमा ने लोगों को बुराइयों पे रोकना क्यों छोड़ा। इस पे तो नुकसान हुआ है उम्मत को, बिलीव में ये बहुत बड़ा नुकसान है, बट वो नुकसान जो गैर हकीमाना तबलीग से हुआ है ये भी कुछ कम नहीं है। आज दीन को हमने तबलीग के नाम पर बदनाम किया, हमने उनको और ज्यादा बुरा बनाने पर मजबूर कर दिया। तो याद रखिए, किसी की अना को ना जगाएं, गैरत को जगाएं। अना सोया हुआ शेर है, उसको सोने लीजिए। गैरत अगले के अंदर जब आती है ना, उसको पता चलता है मैं क्या कर रहा था, मैंने अपने आप को जाया किया हुआ था। फिर आप देखेंगे कि जब आप सब्र करेंगे, सब्र के साथ बात करेंगे, दिल से बात करेंगे, हिकमत होगी, मुआइजा होगी, दिल सोजी होगी। पहले जगह नरम करें फिर हाथ डालें। जगह सख्त है आपकी उंगली टूट जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें बेहतरीन तरीके से इस दीन को फैलाने वाला बना दे। बहुत ही खूबसूरत पारा पूरा हुआ, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हम इसमें आयत 80 से 83 की तिलावत सुनते हैं और खोल लीजिए आयत नंबर 80। बहुत खूबसूरत आयतें थी तो वहाँ नहीं रोका गया, यहाँ पर पढ़ के इसी के साथ फिर इस बारे को पूरा करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون